सूरह त्वाहा आयत नंबर 54। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, कुलू वरआउ अनआमकुम, खाओ और चराओ अपने मवेशियों को, तो खुद भी खाओ और अपने जानवरों को भी चराओ। वरआओ जो है रा ऐन या इसका रूट है, और आप ये लफ्ज जो है ये सूरत यूसुफ आयत 12 में पढ़ चुकी हैं कि जब भाइयों ने हजरत यूसुफ के लिए इजाजत मांगी थी कि अरसिलहु माना गदन यरता वयलब व इन्ना लहू लहाफिजून, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि कल आप यूसुफ को जरूर हमारे साथ भेज दें कि खूब खाए पिए और खेले। यरता उन्होंने उस वक्त बोला था कि वो हमारे साथ चर चुगले। तो रा ऐन या के मानी होते हैं कि जानवर या किसी की भी हिफाजत करना, उसको खिलाना चराना वगैरह। आमतौर पे जानवरों के चरने के लिए आता है, लेकिन जैसे इंसान के लिए भी ये इस्तेमाल हो जाता है, तो यहाँ पे जानवरों के लिए आया है। राई जो है वो गडरिये को कहते हैं, चरवाहे को जो जानवरों को चराता है। हदीस भी है कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलिन अन रैयते, कि तुम में से हर एक राई है और हर एक से उसकी रैयत के बारे में सवाल किया जाएगा। तो मैंने आपको इसकी फैमिली के जो लफ्ज बताए हैं, रा ऐन या जो इसका रूट है, एक तो यही वरओ, दूसरा राई और रैयत, फिर मैंने सूरत यूसुफ का भी यरता लफ्ज बताया। तो मकसद क्या है कि आपको ये लफ्ज मुश्किल ना लगे और आपको याद हो जाए। तो ये जो जमीन फर्श है और इसमें रास्ते हैं और आसमान की बारिश है और तरह तरह की जो नबातात है, अल्लाह ताला कहते हैं कि इसमें बहुत सी निशानियां हैं। इन्ना फी जालिका ला आयतिल उलिन्नुहा। उलिन्नुहा जो है कौन लोग हैं? अकल रखने वाले। तो अकल रखने वालों के लिए इसमें बड़ी निशानियां हैं। ये अल्लाह की रबूबियत की निशानियां हैं और कायनात की ये निशानियां, इस पर इंसान अगर गौर करे तो अल्लाह को पा लेगा। तो उली जो है ये वाले को कहते हैं, नुहा का रूट है नूनहा या नहीं के मानी होते हैं रोकना। और नुहा जो है नोहियातुन की जमा है, मानी है अकल, तो अकल को नोहियातुन कहते हैं। तो अकल क्या करती है? इंसान को गलत कामों से रोकती है, नफ्स को गुनाहों से रोकती है। जैसे यनहउना नफ्सा अनिल कबाहे, तो इसलिए अकलमंद लोग कौन है? जो शिर्क को छोड़ दे, गुनाहों को छोड़ दे और कायनात की बिखरी हुई निशानियां देकर तौहीद परस्त बन जाए। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान पर गुजरने वाले तीन मरहलों का जिक्र किया है कि हर इंसान लाजमन तीन मरहलों से गुजरता है। फरमाया कि इसी जमीन से, हा की जमीर जमीन के लिए आई है कि मिन्हा, इसी जमीन से, खलकनाकुम हमने तुमको पैदा किया कि इंसान मट्टी से बना है, वफीहा नुईदुकुम और इसी में हम तुम्हें वापस लेकर जाएंगे। तो दूसरा मरहला जो है वो मौत से कयामत तक का है कि इंसान मरने के बाद फिर जमीन के अंदर दफन किया जाता है। और तीसरा मरहला व मिन्हा नुखरिजुकुम और फिर इसी में हम तुम्हें दोबारा जो है इसी से जिंदा करेंगे। तो कयामत के दिन दोबारा जिंदा होने के बाद का मरहला। तारतन ता वोरा, ये जो है वो दफा को कहते हैं या बार को कहते हैं। तो तारतन बार, उखरा दूसरी, तो दूसरी दफा फिर इसी जमीन से तुम्हें जो है वो निकालेंगे। तो ये तीन हालतें जो हैं इसका अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि ए इंसान, ये तीन मरले तुझे इसी जमीन पर जो है वो गुजरने हैं। अब आप देखिए कि ये कायनात से जो दलाइल दिए गए हैं, क्योंकि वो मोजा जो मूसा अलैहिस्सलाम को दिए गए थे, यदे बैजा और असा, वो भी मोजात थे। और अब यहां पर जो है वो ये जो मोजात हैं, ये भी जो है फिरौन को समझाने के लिए और हर काफिर को समझाने के लिए है। तो मुफस्सरीन कहते हैं कि ये सारे मोजात, ये सारी निशानियां जो है ये सामने रखी गई ताकि गौर करने के बाद जो है फिर अल्लाह को जो है वो पाया जाए। और फिरौन कौन था? बहुत बड़ा मुनकिर था। اب آیت نمبر 56 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، ہم نے فرعون کو اپنی سب ہی نشانیاں دکھائیں. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ، را حمزہ یا اس کا روٹ ہے، تو ہم نے دکھائیں اس کو آیاتنا، اپنی نشانیاں، کلہا، سب کی سب. اس سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر جو ہے وہ پیچھے آپ نے دو نشانیوں کا ذکر پڑا، پھر آپ نے نو نشانیوں کا ذکر بھی پہلے آپ پڑھ چکی ہیں، اس کے لیے آپ پچھلی صورتوں کو بھی ذہن میں رکھیں، اور پھر کائنات کی نشانیاں. لیکن فرعون نے کیا کیا کہ ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد فَكَذَّبَ وَأَبَى، فا پھر اس بات کو سمیٹ دیا ہے کہ بس اس نے جو ہے انکار کیا، اس نے جھٹلایا، وَأَبَى، اور وہ منکر بن گیا اور نہ مانا. قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى، کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے فرعون نے ایک سیاسی چال چلی ہے. یہ جو جملہ ہے یہ فرعون کی حقیقی بدحواسی اور گھبراہٹ کو ظاہر کرتا ہے. اسے پتا تھا کہ جادو کے زور سے کبھی کوئی ملک کو فتح نہیں کر سکتا، لیکن اس نے یہ الزام جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر لگایا تاکہ اپنی جو رعایا ہے، جو اپنی قوم ہے، اس کو مطمئن کر سکے، اسے ڈرا سکے. تو کہا کہ تو ہمیں اپنے جادو کے اثر سے ہمارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، جیسے تو اقتدار چھیننا چاہتا ہے. فَلَنَاتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، سو ہم بھی اسی قسم کا جادو لاتے ہیں. فَلَنَاتِيَنَّكَ، بس ہم ضرور بضرور لائیں گے تیرے پاس، بِسِحْرٍ، بس جادو، بے مثلے، اسی طرح کا. فَجَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى. اب فرعون نے کہا کہ ہم تمہارا مقابلہ کریں گے اور تمہارے سامنے اسی قسم کا جادو جو ہے وہ لائیں گے. ساتھی کہا فجل، بس طے کر لے، بیننا و بینا کا، ہمارے اور تمہارے درمیان، موعدن، موعدن جو ہے وہ عین دال اس کا روٹ ہے اور اس کے معنی ہے ایک وعدہ. مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ مقابلے کے لیے وعدے کا وقت، اس کی جگہ جو ہے تو طے کر لے. لا نخلفہ، نہیں ہم اس کے خلاف کریں گے، کہ جو ہے وعدے کی جگہ اور وقت مقرر ہو جائے گی تو نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے. لا نخلفہ نحنو، نہیں ہم اس کی مخالفت کریں گے، یعنی ہم اپنے وعدے سے نہیں پھریں گے، اس وقت اس جگہ پہنچ جائیں گے مقابلہ کرنے کے لیے. ولا انتا، اور نہ ہی تم اس کی مخالفت کرنا. مکانن سوا، اور مکان جو ہے یہ جگہ کو کہتے ہیں، سون جو ہے سین وہ یا، اس کے دو معنی ہیں. ایک تو ہے کہ جیسے برابر، درمیان ہونا، کسی کا سیدھا ہونا، مساوی بھی اسی سے ہوتا ہے نا. تو مکانن سون، یعنی مکان جو ہے اس کے معنی ہے کہ جیسے جگہ یا میدان وغیرہ، اور سون صاف، ہموار، برابر. تو کھلے میدان میں، صاف اور برابر میدان میں سامنے آ جاؤ. تو موعد جو ہے اس سے مراد جگہ اور دن ہے، مکانن سون سے مراد صاف ہموار جگہ جہاں ہونے والے مقابلے کو ہر شخص آسانی سے دیکھ سکے، یا ایسی برابر کی جگہ ہونی چاہیے جس میں دونوں فریقین سہولت سے پہنچ چکے ہیں. آیت نمبر 59، قَالَ مُعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ دُحَا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مُعِدُكُمْ، مُعِدُكُمْ جو ہے یعنی وعدہ تمہارا ہے. اب جگہ بھی اور دن بھی کیا طے ہوئی؟ یوم الزینتی، جشن کا دن. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ، اور یہ کہ جمع ہو لوگ، دُحَن دن چڑھے، وَأَدْحَا يَا اس کا روٹ ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ کہ وہ دن طے کر لیتے ہیں جس دن تمہارا میلہ ہوتا ہے، اور ٹائم جو ہے وہ دن چڑھے کا ہوگا، کیونکہ اس وقت جو ہے لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ فرعون کے ہاں کوئی سالانہ میلہ یا جشن کا دن مقرر تھا، जिसे वो ईद के तौर पर मनाते थे, तो इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो जश्न का दिन जो था उसको तय कर लिया और दिन चढ़े हुए, ताकि सारे लोग अच्छे तरीके से जो है वो जमा हो सके, सारी कौम देखे, और जो मुकाबला है दिन की रोशनी में होना चाहिए ताकि कोई शक और शुबा जो है वो बाकी ना रहे। फतवल्ला फिरौन, फस फिरौन जो था वो पलटा, फिर वो लौट गया। फजमा कैदहू, फिर उसने अपनी तदबीरों को जमा किया, अपने दौ जो थे अपने हथकंडे सारे जमा किए। सुम्मा अता, और वो मुकाबले में आ गया। तो फिरौन ने क्या किया, वो पलटा से मुराद क्या है, ये नहीं कि वो कहीं चला गया, बल्कि फिरौन ने क्या किया कि जैसे फिर पीछे मुड़ता है ना कोई शख्स, और फिर जो है वो देखता है कि कैसे उसकी तैयारी करनी है। तो फिरौन ने जब सुना मूसा अलैहिस्सलाम से कि मेले का दिन मुकाबले का है, तो अपनी दरबार की जगह से उठा, वो अपने मशीरों के पास, वजीरों के पास लौटा, और फिर उसने जो है वो सामान इकट्ठा किया मुकाबले का। फजमा कैदहू, अपने सारे हथकंडे और तदबीरें, सुम्मा अता, फिर मुकाबले पर आ गया। मुफस्सरीन कहते हैं कि उस मौके पर उसने पूरे मुल्क के अंदर आदमी दौड़ाए कि हर माहिर जादूगर को जो है वो बुलाकर लाया जाए, क्योंकि वो ये समझ रहा था कि ये जो है अब इस मुल्क की किस्मत का फैसला होना है, उसके तख्त का फैसला होना है। काला लहु मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है ऐन मौके पर जो मुखालिफ ग्रोह था उसको मुखातिब करके कहा, काला लहुम, उनसे कहा, मूसा मूसा अलैहिस्सलाम ने, वैलकुम वैलकुम, खराबी हो तुम पर, ला तफ्तरू ला तफ्तरू, तुम झूठ ना घड़ो, अल्लाह ही अल्लाह पर, कजेबन झूठ, के तुम अल्लाह पर झूठ मत घड़ो। क्योंकि अब वो क्या कर रहे थे, वो मूसा अलैहिस्सलाम के मौजजात को जादू कह रहे थे, तो उन्होंने भी जादू समझकर जादूगरों का मुकाबला करना चाहा, हालांकि ये तो पैगंबर थे, मौजजात को वो जादू कह रहे थे। तो इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम झूठ घड़ रहे हो, उनको डराया, ला तफ्तरू, मत घड़ो, अल्लाह ही अल्लाह पर, कजेबन झूठ, फयुसहितकुम बिअज़ाब, वरना एक सख्त अजाब जो है वो तुम्हारा सत्यानाश कर देगा। सीन हाता जो है इसके मानी है, असल में ये उस छिलके को कहते हैं जो पूरी तरह उतार लिया जाए, तो जब किसी का छिलका पूरी तरह उतार लिया जाए तो उससे वो हिलाक हो सकता है, किसी की खाल छीन ली जाए, तो जैसे उसको सत्यानाश कर देना, उसको जड़ से उखेड़ देना। तो फयुसहितकुम, तो ये जो है ये तुम्हारा सत्यानाश कर देगा, ये तुम्हें फना कर देगा, ये तुम्हें हिला कर देगा, यानी तुमने मौजे को जादू समझा, पैगंबर को तुम जादूगर कहते हो, तो क्या है, फयुसहितकुम बिअज़ाब, एक सख्त अजाब तुम्हारा सत्यानाश कर देगा। वकद खाब मन इफ्तरा, झूठ जिसने भी गढ़ा वो नाकाम हो गया, झूठ जिसने भी गढ़ा वो नामुराद हो गया। खाबा इसका रूट है खा या बा, और इसके मानी होते हैं नाकाम होना का। आयत नंबर 62, फतनाजाऊ अमरहुम बैनहुम व असरुन नजवा, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें ये चैलेंज किया, उन्हें जब डराया, तो ये बात सुनकर अब वो डर गए थे, तो इसलिए आपस में उनकी राय में इख्तलाफ हो गया। फतनाजाऊ, तनाजा जो है इसके मानी क्या है, कि वो आपस में झगड़ने लगे, खींचातानी करने लगे। अमराहुम, अपने काम के मामले में, ये जो मुकाबला करने के लिए इकट्ठे हो रहे थे, अब इस सिलसिले में उनके दरमियान जो है वो झगड़ा होने लगा, करें कि नहीं करें और क्या करें। वह असर नजवा, फिर फरमाया कि वो खुफिया मशवरा करने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने चूंकि बड़े हिकमत के साथ तबलीग की थी, तो इसलिए अब वो कुछ लोग कह रहे थे कि हमें मुकाबला नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैगंबर है, अगर इसका मुकाबला किया तो फिर ऐसा ना हो बर्बाद हो जाए, और कुछ लोग ये कह रहे थे कि नहीं मुकाबला करना चाहिए। तो अब वह असर नजवा, असर उन्होंने छुप कर किया, नजवा मशवरा, तो वो छुप कर आपस में मशवरा करने लगे कि क्या करें। पालू आखिरकार फिर कुछ लोग बोले, अब वो जो फिरौनी पार्टी के सरफिरे लोग थे जो हर हाल में मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत करना चाहते थे, उनमें से कुछ लोग जो डर रहे थे और जिन पर मूसा अलैहिस्सलाम की तबलीग का असर हुआ था, अब जो है उनको कुछ लोग समझाने लगे। पालू वो बोले इन्ना, वो बोले पालू वो बोले इन हाजाने लसाहिराने युरीदाने अन युखरिजकुम मिन अर्दिकुम बिसिहरिहिमा। कहने लगे कि इन हाजाने, इन बेशक या नहीं, हाजाने ये दोनों, हाजा एक को कहते हैं और हाजाने ये दोनों, लसाहिराने अलबत्ता दोनों जादूगर हैं, युरीदाने दोनों ये चाहते हैं, युखरिजकुम, यहां पे भी युखरिजान है ना, नून गिर चुका है, ये दोनों तुम्हें निकाल देना चाहते हैं, मिन अर्दिकुम तुम्हारी मुल्क में से, कि यानी ये दोनों जादूगर अपने जादू के जोर से तुम्हें तुम्हारी जमीन से निकाल देना चाहते हैं, बिसेहरी मा अपने जादू की वजह से, तो बे की वजह से हुमा जो था हिमा बन गया। वह यजहबा और वो चाहते हैं यजहबा कि वो खात्मा कर दें, यजहबान था नून गिर चुका है, तो वो दोनों चाहते हैं कि ले जाएं खात्मा कर दें, बे तरीकाते कुमुल मुसला तुम्हारा जो तरीका है अलमुसला इतना अच्छा उसका खात्मा करना चाहते हैं, ये बे तरीकाते कुमुल मुसला जो है इसको आप सर्कल कर लें, बड़ी खास बात है। तो वो जो शिर्क कर रहे थे और वो जो गलत काम कर रहे थे, अब आप देखें कि उसके बारे में उनकी ये राय थी कि हमारा जो मयारे जिंदगी है, हमारे जो तौर तरीके हैं, ये बेस्ट है, ये बेहतरीन है। तो तरीका तो ये राकाफ जो है, ये रहन सहन चलत फिरत, उसके लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो तरीका तेकुम कि तुम्हारा जो जिंदगी गुजारने का तरीका है, जो तुम्हारा रहन सहन है, अलमुसला, मुसला जो है मीम सा लाम, और यहां ये अफजल के मानी में है, अफजल के मानी में है। अब आप देखें कि जैसे होती है ना कि मिसल, मिसाल के लिए भी आता है और अमसल लफ्ज भी आता है, मिसाली भी आप उर्दू में बोलती हैं, तो यहां पर जो है ये अमसालू की मुअन्नस के तौर पर आया है मुसला। मानी क्या है कि जो हमारा मजहब है या हमारा तरीका है, जो हमारा चाल चलन है, रहन सहन है, जो मुशरिकाना उनका मजहब था, तौर तरीके थे शिरकिया, कहने लगे कि हमारा तरीका दी बेस्ट है, ये तरीका तेकुमुल मुसला, मुसला दी बेस्ट, बेहतरीन, बहुत ही अच्छा। अब आप देख लें कि आज के दौर में भी जो बेहयाई है, जो गुमराही है, जो गलत चीजें हैं, लोग उसको कहते हैं कि मौजूदा दौर में कामयाबी का यही तरीका जो है ये बेस्ट है, और अगर इसको जो है वो छोड़ दिया जाए तो हम नाकाम हो जाएंगे, है ना। तो यहां पर जो है ये बात बताई जा रही है कि अब इस तरह कह के ना वो जो लोग मूसा अलैहिस्सलाम की तबलीग से डर गए थे, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था कि तुम जो झूठ कह रहे हो, तुम जो जो मौजा है उसको तुम जादू कह रहे हो, तो वो क्या करेगा, ये झूठ है अल्लाह पर, तो फयुसहितकुम बिअज़ाब। और सीन हाता मैंने आपको बताया था कि छिलका उतारना किसी का, या हड्डी पर से गोश्त नोचने को कहते हैं, जब हड्डी से गोश्त नोच दिया जाए तो अगला मर जाता है, खत्म हो जाता है ना, किसी का खात्मा कर देना। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इतने बेहतरीन तरीके से उनको समझाया था कि वो डर गए थे, तो अब जो है जो फिरौन के साथी हैं, हामी हैं, वो उन डरे हुए लोगों को जिनके दिल नरम हुए थे उनको समझा रहे हैं कि ये जादू के जोर से तुम्हें तुम्हारी जमीन से बेदखल करना चाहते हैं और तुम्हारा जो मिसाली तरीके जिंदगी है इसका खात्मा करना चाहते हैं। जैसे आज के दौर में खवातीन की आजादी है या बेहयाई है, या ये जो कल्चर के नाम से, आर्ट के नाम से जो है वो कहा जाता है कि ये जदीद دور کے جدید تقاضے ہیں اور یہ ماڈرن دور ہے اور یہی بہترین جو ہے وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور اگر اس پر نہ چلے تو ہم بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہے نا؟ آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں، یا جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہ خواتین نے یہ بات کہی تھی نا کہ اگر جو ہے وہ اس کو بند نہ کیا جائے گا تو پھر یہ تو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، جیل میں ڈال دینا چاہیے. تو بے حیائی کو انہوں نے پروان چڑھایا تھا نا، جیسے وہ عورت جو امرت مصر تھی، جو مصر کے جو عزیز کی بیوی تھی، اس نے کیا کیا تھا کہ جو گناہ کی دعوت دی موسیٰ علیہ یوسف علیہ السلام نے جب نہ مانی تو پھر اس نے کہا کہ میری بات نہیں مانو گے تو جیل میں جاؤ گے، اور وہ اس کو ہی سمجھ رہے تھے کہ یہی ترقی ہے اور یہی زمانے کا دور دورہ تھا، اور اس نے یہ کیا تھا کہ اپنی اس گناہ کی بات کو پھر باقی عورتوں کو بلا کر بھی جو ہے وہ پروف کروایا تھا کہ ہاں میں سچی تھی، اور میں اس کو پھر جیل نہ بھیجتی تو اور کیا کرتی. تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تمہارا مثالی طریقے زندگی کا یہ خاتمہ کر دیں گے. آیت نمبر 64، فاجمعوا کیدکم، اب پلاننگ کر رہے ہیں کہ بس تم سب جو ہے وہ اکٹھا کر لو، کیدکم اپنے دو، کہ جتنی تدبیریں اکٹھی کر سکتے ہو کر لو. ثم ایتو صفا، ایتو جو ہے اس کے معنی ہے کہ تم آؤ، حمزہ تا یا کہ تم آؤ، صفا صف باندھ کر، کہ پھر ایکا کر کے تم سب میدان میں آ جاؤ، یعنی جو ہے وہ یونائٹڈ ہونا ہے. اور آپ دیکھیں کہ آج بھی کفر جو ہے وہ اسلام کے خلاف جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے، ایک متحدہ محاذ بنا لیتا ہے. تو یہ پرانے زمانے سے ہوتی آئی ہے، جیسے غزوہ احزاب ہوئی تھی تو سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے نا جو کفر کرنے والے تھے، مسلمانوں کے مخالف تھے اس زمانے میں بھی، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور آج کے دور میں. تو کہا انہوں نے ثم ایتو صفا، ایکا کر کے میدان میں آؤ. فقد افلح الیوم من استعلا، بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا. من استعلا عین لام واو اس کا روٹ ہے، اور اس کے معنی ہے کہ جو بھی غالب ہوگا وہی جو ہے وہ جیتے گا. تو انہوں نے وہ جو یوم الزینہ، وہ جو میلے کا دن تھا، اس مقابلے میں جو ہے وہ اس کو سمجھا کہ یہ دن بڑا نازک اور اہم ہے، یہ فیصلہ کن دن ہے. تو مستقبل کی کامیابی جو ہے وہ اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جیتا کون ہے. تو اس لیے کہا کہ پورا زور لگاؤ. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکونا اول من القا، جادوگر بولے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکیں. تلقیا جو ہے لام کاف یا، اس کا روٹ ہے لام کاف واو، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا، ملاقات کے لیے بھی آتا ہے، یہ القا بھی ہوتا ہے کسی کے دل میں بات ڈال دینا. تو باہر جادوگر بولے کہ تم اپنی چیز کو پہلے ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پھینکیں. پالا بل القو، موسیٰ علیہ السلام نے بڑے اعتماد سے کہا کہ نہیں بلکہ تم پھینکو. فائزہ حبالہم، پس ان کی رسیاں جو تھیں، وعصیہم، پس ان کی جو رسیاں تھی، حبل حبالام رسی کو کہتے ہیں، حبال اس کی جمع ہے، پس ان کی رسیاں، وعصیہم، عصا جو ہے یہ لاٹھی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ عصیہ جو ہے یہ اس کی جمع ہے، اور اس کا روٹ ہے عین سواد واو. تو ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں جو تھیں، یخیلو خیال میں آئیں، خیال میں آئیں سے مراد کیا ہے، دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی. جیسے خیل گھوڑے کو بھی کہتے ہیں نا، گھوڑا کیسے بھاگتا ہے، جیسے انسان کے ذہن میں خیال دوڑ رہے ہوتے ہیں نا، تو خیال، خیل، تخیل، خیالات، سب کا روٹ ایک ہے. تو یہ خیالو خیال میں آئی، محسوس ہونے لگی، الی ہی اس کے، من سہرے میں ان کے جادو سے. تو جادوگروں کی جو رسیاں اور لاٹھیاں تھیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں جو ہے یہ ایسے محسوس ہونے لگی کہ جیسے کہ جادو ہے. تو یہاں پہ الی ہی کی ضمیر موسیٰ علیہ السلام کے لیے آئی ہے کہ اچانک یکا یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ علیہ السلام کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی. انہا تسعا، کہ وہ دوڑ رہی ہیں. فاوجس فی نفسہ، پھر وہ دل میں ڈر گیا، کون؟ موسیٰ علیہ السلام. خیفتن، खौफ मूसा मूसा अलैहि सलाम को, तो मूसा अलैहि सलाम को अपने दिल में खौफ महसूस हुआ। तो औजसा जो है वो जीम सीन इसका रूट है, और ये दिल में डरने के लिए, दिल में कोई बात महसूस करना उसके लिए ये आता है। ऐसी ऐसी कोई आवाज या ऐसी कोई चीज जैसे दिल में इंसान को महसूस हो, तो हजरत मूसा अलैहि सलाम जो थे वो दिल में खौफ महसूस करने लगे। कुलना, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि हमने कहा ला तखफ इन्नका अंतल आला, हमने कहा मत डर तुम ही गालिब रहोगे। अंतल आला, तू ही ऊंचा रहेगा, ऐन लाम वो इसका रूट है। अब आपने देखा कि पीछे मूसा अलैहि सलाम जब फिरौन के दरबार में जा रहे थे तो डर रहे थे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहां पे इन दोनों को तसल्ली दी थी, और इन दोनों से कहा था ना आयत 46 में, 46 में, कि ला तखाफा इन्ननी माकुमा अस्मा व अरा। तो आप देखें कि यहाँ पे जो ही देखा है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि मूसा अलैहि सलाम जो है जरा डर रहे हैं, तो फौरन उनको जो है वो तसल्ली दी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे क्या कहा कि आप डरिए मत, आप ही कामयाब होंगे, आपको ही फतह मिलेगी, आप ही गालिब रहेंगे। वह अलके, और डाल दे, लाम काफ या इसका रूट है, वह अलके, और ये ऑर्डर का सीगा है कि आप डाल दीजिए, माफी यमीनी का जो तेरे दाएं हाथ में है, तलकफ मा सनाऊ, वो निकल जाएगा जो उन्होंने बनाया। और लाम काफ फा जो है इसके मानी है निकल जाना, उसको जो है वो खत्म कर देना। तो यहां पर जो है एक तरफ अल्लाह ताला ने ये खुशखबरी दी कि आप जीत जाएंगे, दूसरी तरफ जो है ये कहा कि आपके हाथ में जो असा है आप उसको फेंक दीजिए, तीसरी ये बात बताई कि अभी इनकी सारी बनावटी चीजों को ये निगल जाएगी। तो यहां पर आप देखिए कि तलकफ का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है जिसका रूट है लाम काफ फा, और इसके मानी है निगलना। तो जो कुछ भी इन्होंने ये झूठा जादू बनाया है, तो जो जब आप अपनी असा को फेंकेंगे तो ये झूठे जो सांप है इन सबको जो है ये बड़ा अजदहा निकल जाएगा। इन्नमा सनाउ कैदो साहिर, फरमाया कि ये जो कुछ बनाकर लाए हैं ये तो जादूगर का फरेब है। इन्नमा इसके सिवा कुछ भी नहीं, सनाउ तहकीक जो बनाया इन्होंने, उन्होंने जो रस्सियों से जादू बनाया था कि सांप बनकर जो दौड़ते हुए महसूस हो रहे थे मूसा अलैहि सलाम को, कहा कि ये क्या है, कई दो साहिर, ये फरेब है जादूगर का। वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता, और जादूगर कभी कामयाब नहीं हो सकता। और आपको पता है ना जादू करना कराना गुनाहे कबीरा है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या ऐलान कर रहे हैं कि जादूगर कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो जैसे आज के दौर में भी बाज लोग बाज पर जादू करते हैं कराते हैं, याद रखें कि ये गुनाह कबीरा है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ये ऐलान कर रहे हैं कि जादूगर कभी फला नहीं पा सकता, क्योंकि ये एक धोखा है, और जो धोखा देता है धोखा करता है किसी पर कराता है, तो ये सारे जो हैं ये गुनाह का काम करते हैं। तो यहाँ पे भी ये ऐलान किया कि ये तो जादूगर का फरेब है और ये कामयाब नहीं हो सकते। हैसु अता, खा वो किस शान से आए, हैसु अता यानी उनकी जो रस्सियां थी वो खूब दौड़ती हुई महसूस हो रही थी ना, तो खा वो किसी भी शान से आए तो आप परवाह ना करें, यानी इनके जादू की कोई हकीकत नहीं है, बस आपके हाथ में जो कुछ है उसको आप डाल दीजिए। और ये लोग जो हैं, जो भी इन्होंने जो जादू पेश किया है, तो ये सारा जो है ये मिट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। फउल्किया सहरतु सुज्जदन, फिर आखिर यही हुआ कि सारे जादूगर सजदे में गिरा दिए गए। फउल्किया फिर गिर पड़े, सहरतु जादूगर सुज्जदन सजदे में। अब आप देखें कि यहां पे कहा जा रहा है कि फउल्किया यानी अंदर से उनको किसी ने जो है वो गिरा दिया, यानी जो जादूगर थे वो मुल्क के माहिर जादूगर थे। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम के असा ने अजदहा बनकर उनके ख्याली सांपों को निगल दिया, तो ये माहिर जादूगरों को पता चल गया कि ये जो काम हुआ है ये जादू के जरिए नहीं हुआ, ये बल्कि ये मोजा है, ये अल्लाह की खास कुदरत से हुआ है। तो उनके अंदर ने जब इस चीज को तस्लीम कर लिया, वो फौरन सजदे में गिर गए। कालू, वो बोले, आमन्ना बिरब्बे हारून व मूसा, हम ईमान ले आए हारून और मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर। काला, फिरौन ने बोला, फिरौन ने कहा, आमन तुम लहू कबला अन आजना लकुम, तुम ईमान ले आए कबल इसके कि मैं तुम्हें इसकी इजाजत देता। इन्नहू लकबीरुकुम, बेशक ये तुम्हारा गुरु है, या कबीरुकुम, ये तुम्हारा जो है वो उस्ताद है, ये तुम सबका बड़ा है। अल्लाजी अल्लामाकुमुस सिहर, जिसने तुम्हें जादूगरी की तालीम दी है, जिसने तुम्हें जादूगरी सिखाई है। तो जब फिरौन ने ये देखा कि इसके बुलाए हुए जो जादूगर थे वो हार गए हैं और मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो जीत गए हैं, तो और साथ ही जो जादूगर थे उन्होंने जो है वो फौरन जो है वो ऐलान कर दिया है कि ये मौजदा है, ये जादू नहीं है, और ये सजदे में गिर गए हैं, तो उन्होंने बाआवाज़े बुलंद ये ऐलान किया कि हम ईमान ले आए हारून और मूसा अलैहिस्सलाम के परवरदिगार पर। अब ये जो वाकया था, अब यौमुल जीना, आप जरा तसव्वुर करें कि मेले का दिन है, दूर दूर से लोग जो है वो जमा है, और दोहन यानी चाश का वक्त, खूब दिन चढ़ा हुआ है, हर तरफ से लोग जमा है, और ऐन उस वक्त जो है जादूगर जो है उन्होंने ना सिर्फ अपनी हार तस्लीम की बल्कि उन्होंने इस बात को भी तस्लीम किया कि जो मूसा अलैहिस्सलाम ने पेश किया है ये जादू नहीं है बल्कि ये मौजजा है, और साथ ही वो ईमान ले आए। तो ये जो इनका ईमान लाना था, इस चीज ने जो है वो उन सबको बौखला दिया, परेशान कर दिया, और फौरन जो है फिरौन जो है उसने जादूगरों को जो है ना सिर्फ डराया और लोगों को ये साबित करना चाहा कि ये तो मूसा अलैहिस्सलाम को उसने कहा कि नऊज बिल्ला कि ये भी जादूगर हैं, और बाकी जादूगरों ने जादू जो था इसी से सीखा था, अपने उस्ताद से सीखा था, और ये आपस में कुछ तय करके आए थे, तो ये इनकी मिली भगत है। और आप सूरत आराफ में ये पढ़ ही चुकी है ना कि वहां पे उसने ये बात कही थी कि इन्ना हाजा या मकरुम मकर तुमूहु फिल मदीना थी ले तुखरिजु मिन्हा अहलहा, तो वहां आप ये बात पढ़ चुकी थी। तो यहाँ पे भी वो यही बात जो है वो कहता है और इनको धमकी देता है, क्या कहता है कि फला उकत्तिअन्न अईदियकुम, कि पस मैं जरूर बा जरूर तुम्हारे हाथों को काटूंगा। लाम ला में ताकीद है, नून पर शद भी ताकीद के लिए आई है। वह अर्जुलकुम, और तुम्हारे पाओं को, मिन खिलाफिन, मुखालिफ सिमतों से, वला उसल्ली बन्नकुम, और जरूर बा जरूर मैं तुम्हें सूली पे चढ़ाऊंगा। लाम ला में ताकीद है, नून पर शद भी ताकीद के लिए आई है, और सलीब स्वाद लाम बा इसका रूट है, और इसके मानी क्या है, सूली पर चढ़ाना। तो उसने कहा कि मैं जरूर बा जरूर जो है वो तुम लोगों को सूली पर चढ़ाऊंगा। फी जुजू इन नखली, खजूर के तनों पर। जुजू जो है इसका रूट है जीम जाल ऐन, ये पीछे आपने सूरत मरियम की आयत 25 में भी इसकी फैमिली का लफ्ज पढ़ा है। अल्लाह ताला ने बीबी मरियम से कहा था, वहुज्जी इलैकी बिजिज इन नखला, वहां पे आपने वाहिद पढ़ा था कि खजूर के तने को हिला, तो जीम जाल ऐन वाहिद है और जुजू जो है ये इसकी जमा आई है। तो ज्यादा थे जादूगर, और मुफस्सरीन कहते हैं कि जादूगर तकरीबन जो है वो जैसे अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह की रवायत है कि वो 70 जादूगर थे, सुबह के वक्त वो जादूगर थे और शाम के वक्त वो शहदा बन गए। क्योंकि फिरौन ने क्या किया कि उन सबको जो है वो सूली पर चढ़ा दिया। तो अब यहां पर भी फिरौन ने धमकी दी कि मैं तुम्हें खजूर के तनों पर सूली पे चढ़ाऊंगा। बोला ताला मुन्ना अयुना अशद्दु अजाबं व अबका, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि हम दोनों में से किसका अजाब ज्यादा सख्त और देर पा है, यानी मैं तुम्हें ज्यादा सख्त सजा दे सकता हूं या मूसा, क्योंकि पीछे मूसा अलैहि सलाम ने भी तो सजा से डराया था ना, मूसा अलैहि सलाम ने कैसे डराया था, वैलकुम ला तफ्तरू अल्लाह कज़बन फयुसहितकुम बिअज़ाब फकद खाबा मन इफ्तरा, आयत 61 में जिक्र है। अब यहाँ पे उसने कहा वला तालमुन्ना, और जरूर बस जरूर ये पता चल जाएगा, अय्युना कौन सा हम में से, अशद्दु अफलू के वजन पर है, इसम तफ़सील है, ज्यादा सख्त है अजाबन सजा देने में। अबका इसका भी जो है वो आपको अंदाज वो नहीं लग रहा, ये भी अफलू के वजन पर है, तो अबका कौन ज्यादा जो है, किसका अजाब जो है वो ज्यादा देर पा है। मुफस्सरीन कहते हैं कि उस जमाने में सूली देने का पुराना तरीका ये था कि एक लंबा शतीर लेकर जमीन में गाड़ देते थे, या किसी पुराने दरख्त का तना इस गर्ज के लिए इस्तेमाल करते थे, और इसके ऊपर के सिरे पर एक तख्ता आड़ा करके बांध देते थे, फिर मुजरिम को ऊपर चढ़ाकर इसके दोनों हाथ फैलाकर आड़े तख्ते के साथ कीलें ठोंक देते थे। अब आप देखें कि दोनों हाथ फैलाकर वो तख्ते के साथ कीले ठोंक दी, इस तरह मुजरिम तख्ते के बल लटका रह जाता था और घंटों सिसक सिसक कर जान दे देता था। सलीब दिए हुए ये मुजरिम मुद्दत तक यूं ही लटके रहने दिए जाते थे ताकि लोग उन्हें देख देख कर इबरत हासिल करें। तो अब यहां पर जो है यही बात है कि जब ये जादूगर जो थे ये ईमान ले आए, पुकार उठे, तो फिरौन ने जो है इनको ये सख्त सजा देने की जो है वो धमकी दी, लेकिन इन जादूगर मुसलमानों पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ। क्यों? ये सच है कि जब ईमान सच्चा होता है तो दुनिया की कोई ताकत जो है उसके पांव जो है उनको लड़खड़ा नहीं सकती, बल्कि जो मुखालफत करने वाले हैं वो खसो खाशाक की मानिंद बह जाते हैं, वो झाग की मानिंद बह जाते हैं, और जो ईमान लाने वाला सर है वो कट तो जाता है पर झुकता नहीं है, वो सर जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अल्लाह के आगे जो है वो झुकता है। तो यहां पर जो है ये फिरौन की धमकी, कालू जादूगर बोले लन्नू सिरा का अला मा जा अना मिनल बय्यिनाती वल्लज़ी फतरना फक्दि मा अंतकाद इन्नमा तक्दी हाजिहिल हयात दुनिया। बड़ा जबरदस्त उन्होंने जवाब दिया है। जादूगर ने कहा कि लन नुसिरा का हमजा सारा, इसके मानी होते हैं तरजीह देना, इसार होता है ना, आप इसार लफ्ज बोलते हैं, इसकी फैमिली का इसार है, जब आप इसार करती हैं इसका मतलब होता है कि एक ही चीज है और आप खुद लेने की बजाय वो चीज किसी और को देती हैं, तो आप क्या करती हैं, तरजीह देती हैं, इशार दे करती हैं ना। तो अब जादूगर जो है ये बोले कि लन नो सिरा का, हम हरगिज तुझे तरजीह ना देंगे, अला पर मा जा अना मिनल बय्यिनाती, जबकि हमारे पास जो है वो रोशन निशानियां आ चुकी हैं, यानी हमने मौजा देख लिया है, हमारे पास जो वाजे दलाइल आ गए हैं, इसके बाद अब तेरे तुझे तरजीह नहीं दे सकते, तेरी बात नहीं मानेंगे। वल्लज़ी फतरना, और वो जिसने पैदा किया हमको, फतरा तराश कर खराश कर खूबसूरत बनाया, तो वो जात जिसने हमको पैदा किया उसकी कसम, वल्लज़ी फतरना कसम है उस जात की जिसने हमें तराश खराश कर खूबसूरत बनाया, तो उसकी तरफ से हम रोशन निशानियां सामने आ जाने के बाद हक बात पर तेरे झूठ को और तुझे हम जो है तरजीह नहीं दे सकते। अब आप देखें कि इनका कितना जबरदस्त जो है वो ऐलान है, अनाउंसमेंट है जादूगरों की, और फिरौन की कितनी शदीद धमकी है जो आयत 71 में आपने पढ़ी, और लेकिन जादूगर क्या कहते हैं, फक दिमा अंतकाद, तू जो कुछ करना चाहे वो कर ले, फक दी काफ दात या काजी होता है ना कि फैसला करे उसको नाफिज कर दे, तो कहा कि तू जो करना चाहता है कर ले, इन्नमा तकदी हाजिल हयात दुनिया, बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है कि तू ज्यादा से ज्यादा बस इसी दुनिया की जिंदगी का फैसला कर सकता है ना, तू हमारी इस दुनिया की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, तू हमारी जिंदगी को मौत में तब्दील कर सकता है, तू ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा। आप देखें कि ये जो जादूगर जो अब मुसलमान हो चुके हैं, तो जोश-ए-ईमानी में बगैर किसी खौफ के कैसा खूबसूरत जो है वो जवाब देते हैं कि तू क्या करेगा, तू ज्यादा से ज्यादा हमारी दुनिया को बर्बाद करेगा ना, तू हमें जो भी सजा देगा वो दुनिया की जिंदगी में तुम्हारी सजा होगी ना, तो हमें इस दुनिया की जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। अब देखें इसको ईमान कहते हैं, ये ईमान है जिसके अंदर एक हरकत है, एक एक इनकलाब है और एक जुर्रत है, किरदार की जुर्रत है। अब आप देखें कि थोड़ी देर पहले जादूगर जो थे वो दुनिया की खातिर आए थे कि हमें कुछ मिलने वाला है, और ईमान का उनके अंदर इतना असर है जो पहाड़ की तरह उनके दिल के अंदर ईमान गढ़ गया है कि हर जुल्म के बावजूद वो डट गए हैं। और जादूगरों के वाक्य से हमें क्या बात पता चलती है कि पहली बात ये कि ईमान की कबूलियत में उजलत, कि जब हक बात नजर आए तो उसको कबूल करने में देर ना की जाए, कहीं भी पता चल जाए कि मैं गलती पर हूं, मैंने झूठ बोला है, मैंने ये ज्यादती की है, मैंने गुस्सा किया था, मेरी गलती थी, और हक बात सामने आ गई है तो फौरन उसको तस्लीम किया जाए जैसे कि जादूगरों ने किया। दूसरी बात यह है कि इनकलाब, तब्दीली, चेंज, और उनके अंदर चेंज आ गया है कि वो ईमान वाले बन गए, फौरन ईमान वाले बन गए। तीसरी बात, उन्होंने अनाउंस किया है, वो छुपे हुए नहीं है, डरे हुए नहीं है, कहीं दबकर नहीं बैठे हुए, उन्होंने ऐलान किया है कि आमन्ना बिरब्बे हारूना व मूसा। और इसके बाद जो है एक और अहम बात यह है कि उन्होंने फिरौन की धमकी की कोई परवाह नहीं की, तो ईमान जो है वो इंसान को मजबूत बना देता है। फिर और अहम बात क्या है कि ईमान लाने वाले जो है हमेशा अपनी आखिरत की फिक्र करते हैं, जैसे कि इन्होंने अपनी आखिरत की फिक्र की कि इन्नमा तक्दी हाजिल हयात दुनिया, कि तू हमें हमारी दुनिया की जिंदगी बर्बाद करेगा, हमारी जिंदगी को खत्म करेगा, तो हमें इसकी कोई परवाह नहीं। और आयत 73 में फरमाया इन्ना आमन्ना बिरब्बिना, हम तो अपने रब पर ईमान ले आए हैं, क्यों, लियग़फिरा लना खताया, ताकि वो हमारी खताएं माफ कर दे, वमा अकरहतना अलैहि मिनस सिहर वल्लाहु खैरुन व अबका। और अल्लाह हमारी खताओं को माफ कर दे, वमा अकरहतना अलैहि, और जो तूने जबरदस्ती की इस पर, मिनस सेहरी, जादू से, कि ये जो जादूगरी है जिस पर तूने हमें मजबूर किया था, तो अल्लाह हमें इससे दरगुजर कर ले। तो उन्होंने अल्लाह से क्या दुआ मांगी कि वो हमारी खताएं माफ कर दे, और इस जादूगरी से भी जिस पर तूने हमें मजबूर किया था, अकराहतना यानी हमने ये जो जादूगुरु का जो कुछ भी पेश किया तो ये कराहत से किया, तूने हमें जो है वो मजबूर किया था, तो हम अल्लाह से इसकी माफी मांगते हैं, वरना हम एक मौजे के मुकाबले पे कैसे आते। वल्लाहु खैरुन व अबका, और अल्लाह ही बेहतर और बाकी रहने वाला है। तो खैर, खैरुन और अबका ये दोनों इसम तफजील है, सुपरलेटिव डिग्री, कि अल्लाह बहुत ही अच्छा है और वही जो है वो बाकी रहने वाला है। तो अब यहां पर इसके मानी क्या है कि अल्लाह जो हमें देगा वो दुनिया और माफिया से बेहतर है और हमेशा बाकी रहने वाला है। तो अब यहां पर जादूगर जो है ईमान लाने के साथ साथ तौबा इस्तग़फार कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि हमने जो जादूगरी का मुजाहरा किया तो ये हुकूमत के दबाव से किया था, वरना हमारा सीना ईमान के लिए खुल गया था, और इसका उन्होंने ऐलान कर दिया। और साथ ही उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि जो अल्लाह की तरफ से हमें मिलने वाला है वो ज्यादा अच्छा है और ज्यादा बेहतरीन है। तो आप देख लें कि कैसा था इनका ईमान, इनको आखिरत पर कैसा यकीन था, कि वो कहते हैं कि जो कुछ हमारे अल्लाह की तरफ से हमें मिलेगा, वल्लाहु खैरुन अबका, अगर ये सबक अगर आपको याद हो जाए, मुझे याद हो जाए, तो हमारी दुनिया की जिंदगी और हमारी मौजूदा जिंदगी आसान हो जाए, बेहतरीन हो जाए, हमारी जिंदगियों के अंदर, हमारी बातों के अंदर, हमारे किरदार के अंदर एक यकसुई आ जाए, एक इत्मीनान आ जाए, एक कनात आ जाए। तो हमेशा कोई भी रवैया अख्तियार किया जाए तो नजर अल्लाह पर हो, आखरत पर हो, वल्लाहु खैरुन वअबका। और आप जरा गौर करें कि जादूगरों को ये बात थोड़ी देर में समझ में आ गई कि अल्लाह ही बेहतर है और जो अल्लाह के पास है वही बाकी रहने वाला है, तो आखरत ही बेहतर है। तो मुफस्सरीन कहते हैं कि ये आयत नंबर 73 पर जादूगरों का बयान खत्म हो जाता है और आगे अल्लाह ताला ने तस्कीर की है, इन्नहु मैयाति रब्बहु मुजरिमन फइन्नहु लहू जहन्नम, इन्नहु मैयाति रब्बहु मुजरिमन फइन्न लहू जहन्नम ला यमूतु फीहा वला यहया। अब यहां पर जो है ये आयत नंबर 84 और 85, इसमें दो किरदार पेश किए हैं। पहला किरदार क्या है कि जो शख्स अपने परवरदिगार के पास मुजरिम बनकर आएगा, जो शख्स मुजरिम बनकर अल्लाह के सामने हाजिर होगा, फइन्ना लहू जहन्नम, तो बस उसके लिए जहन्नुम है। जहन्नुम क्या है? हर तरह का दुख, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी, अजाब और उसका मजमुआ। ला यमूतु फीहा वला यहया, ना वो इसमें जिएगा और ना वो इसमें मरेगा, तो मौत और जिंदगी के दरमियान लटकता रहेगा। ना मौत आएगी जो उसकी तकलीफ और मुसीबत का खात्मा कर दे, और ना जीने का ही उसको कोई लुत्फ मिलेगा कि वो जिंदगी को मौत पर तरजीह दे सके। वो जिंदगी से बेजार होगा, वो चाहेगा कि उसको मौत आए लेकिन मौत नसीब नहीं होगी, मरना चाहेगा पर मर ना सकेगा। तो वो जिंदगी और मौत के दरमियान जो है वो लटकता रहेगा, वो मौत की कैफियत में होगा लेकिन जिंदा होगा, और वो बहुत ही तकलीफ देह हालत में होगा। जैसे आज दुनिया की जिंदगी में भी बाज लोग जो हैं बड़े ही गमजदा होते हैं, बहुत ही परेशान होते हैं और फिर सोचते हैं कि हमें मौत ही आ जाए, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। अल्लाहुम्मा ला तजल्ला मिन्हुम। तो ये कौन थे जिन्होंने अल्लाह और अल्लाह की आयात का मजाक उड़ाया, जिसने पैगंबर का इनकार किया। अब दूसरा किरदार आप देखिए, वमन यातही मोमिनन, और जो आया अल्लाह के पास मोमिन बनकर, ईमानदार होकर, तो मोमिन की हैसियत से जो आएगा, फद अमिल सालिहात, उसने नेक अमल किए, फउलाइक लहुमुद दरजातुल उला, तो उसके लिए जो है बुलंद दर्जे हैं। दाल राजीम दर्ज, ये लफ्ज आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ये जन्नत के दर्जात के लिए, बुलंदी के लिए, ऊपर सीढ़ियां चढ़ने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। और दर्क, दाल रा काफ कैफ, दाल रा कैफ जो है वो लफ्ज जहन्नुम की सीढ़ियां नीचे उतरना, उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो प्यारी बहनों, होमवर्क क्या है? ईमान लाना है और अमले स्वाले करने हैं। आपको अपने बच्चों के होमवर्क की फिक्र होती है ना, कि बच्चों को स्कूल से जो होमवर्क मिला है उन्होंने किया है या नहीं, तो हमें अल्लाह से होमवर्क मिला है और वो क्या है? ईमान लाना और अमले स्वाले करना। तो क्या आपने ये होमवर्क कर लिया? और ईमान किस पर लाना है? अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, कुरान मजीद पर, फरिश्तों पर, आखिरत पर और तकदीर पर। फिर अगर मगर नहीं इंसान कहता, फिर इंसान इस बात पर यकीन करता है कि जो कुछ मेरे नसीब में था वो मुझे मिल रहा है, ये जो आजमाइश है ये मेरी किस्मत में लिखी थी। फिर इंसान अगर मगर, अगर ऐसा हो जाता वैसा हो जाता कहकर जो है वो अपनी जिंदगी को और दुखी नहीं करता। तो ईमान लाना है, तो आप अपने ईमान का जायजा लें, आप अपने ईमान का जो कंपैरिजन है वो जादूगरों के ईमान से करें। कैसा था उनका ईमान, कैसा था उनका किरदार, कैसा था उनका इनकलाब, कैसी मजबूती थी, कैसी जुर्रत थी, कैसा यकीन था कि जो अल्लाह के पास है खैरुं व अबका है, और कैसा उनका ऐलान था कि इन्नमा तक्दी हाजिल हयात दुनिया, इन्नमा तक्दी हाजिल हयात दुनिया। और आप क्या करती हैं? दुनिया की जिंदगी की फिक्र मैं क्या करती हूँ? हम सबको अपना मुहासबा करना चाहिए, अपना जायजा लेना चाहिए। ईमान लाने वाले और अमले सवाले करने वाले लोग जो हैं, फउलाइका लहुमुद दरजातुल उला, ऐसे सब लोगों के लिए बुलंद दर्जे हैं जन्नात अदनिन, हमेशा रहने वाली जन्नतें बागात, तजरी मिन तहती हल अनहारु खालिदीन फीहा, कि जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी जिसमें वो हमेशा रहेंगे। वज़ालिका जज़ा उमन तज़क्का, ये बदला है उस शख्स के लिए जो के पाकीजगी इख्तियार करे। वज़ालिका जज़ा उमन तज़क्का, तो ये बदला किसे मिलेगा? जिसने दुनिया की जिंदगी में अपना तज़किया किया, जो अपने बुरे जज्बात थे उनको जो है वो दबाया, और जो अच्छे जज्बात थे उनको उन्होंने जो है वो उभारा। तो आप अपना मुहासबा करें, मैं अपना मुहासबा करूं, क्योंकि हम सबको जन्नत तो चाहिए, लेकिन क्या जन्नत के शाने शयान तैयारी कर रहे हैं? जन्नत में हमेशा रहना चाहते हैं ना, तो उसके लिए फिर क्या करना है कि सोचना है कि मैं कहाँ पे खड़ी हूं और मैं जो हूं वो क्या करती हूं। इस सिलसिले में मैं आपके सामने एक छोटा सा वाकया जो है ये रखना चाहती हूं कि आप देखें कि आप जो है आपकी जिंदगी में आपकी रूटीन क्या है। क्या आप जो है वो अल्लाह की शुक्रगुजार बंदी हैं या नाशुक्री? क्या आप सब्र करती हैं या के बेसब्री का मुजाहरा करती हैं? या आप के साथ कोई बुरा मामला करता है तो शिकवे शिकायत करती हैं या फिर जो है वो सब्र करती हैं? जैसे जो है वो आपने काजी शुरैह का नाम सुना होगा, जिन्होंने तकरीबन 60 साल जो है वो मुसलमानों के दरमियान फैसले किए, 60 साल तक चीफ जस्टिस रहे सहाबा के जमाने में। ये एक ताबई थे, लेकिन उमर फारूक रजी अल्लाह ने इनको जो है वो जस्टिस बनाया था, चीफ जस्टिस बनाया था। इनका एक वाकया है कि एक दफा एक दोस्त जो है वो इनके पास किसी और दोस्त की तरफ से पहुंचाए जाने वाले गम की शिकायत कर रहा था। काजी शुरैह ने जब उसका उसकी ये शिकायत सुनी, फौरन उसका हाथ पकड़ लिया, उसको एक तरफ को ले गए, कहने लगे, ऐ मेरे भाई, अल्लाह के अलावा किसी का शिकवा ना करो। अब जिसका भी शिकवा करोगे वो तो या तो तुम्हारा दोस्त होगा या दुश्मन। अगर वो दोस्त हुआ तो तुम शिकायत करके उसे परेशान करोगे, और अगर वो दुश्मन हुआ तो तेरी शिकायत पर वो खुश होगा। फिर अपनी आंख की तरफ इशारा किया, कहने लगे, अल्लाह की कसम, 15 साल से मैंने इस आंख से ना कोई शख्स देखा है ना कोई रास्ता, लेकिन तेरे अलावा आज तक किसी को नहीं बताया। यानी उनकी एक आंख की रोशनाई जा चुकी थी, 15 साल हो चुके थे एक आंख से देखते थे। कहा कि मैंने आज तक किसी बंदे से इसका शिकवा नहीं किया। फिर कहा, क्या तुमने अल्लाह के नेक बंदे का ये कौल नहीं सुना? कैसे अच्छे थे, कैसे ईमान वाले थे। सूरत यूसुफ आयत 86 में आप भी पढ़ चुकी हैं कि जब याकूब अलैहिस्सलाम को उनके अपने बेटों ने दुख दिया था, गैरों ने नहीं अपनों ने, और वो भी कौन, जो जिगर के टुकड़े थे बेटे, के यूसुफ से अलग कर दिया और जो भी उनका मामला था, तो उन्होंने क्या कहा था, इन्नमा अश्कू बसी व हुज्नी इलल्लाह, इन्नमा अश्कू बसी व हुज्नी इलल्लाह, मैं अपने गम की फरियाद अल्लाह ही से करता हूं। तो प्यारी बहनों, जब भी कोई मुसीबत आए अल्लाह ही से शिकायत करनी चाहिए, अल्लाह ही को अपना गम खार बनाना चाहिए। वो बेहतरीन जात है, उससे सवाल करेंगी वो रद्द नहीं करेगा, उससे दुआ मांगेंगी तो रायगा नहीं जाएगी। तो अल्लाह के सामने अपना दामन फैलाना चाहिए और अपने दिल को तकवा से भरना चाहिए, तज़किया से, और अल्लाह की अता करदा नेमतों पर शुक्र करना चाहिए। वज़ालिका जज़ा उमन तज़क्का, ये बदला उस शख्स के लिए जो पाकीजगी इख्तियार करे। तो यहाँ पर ये बीच में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो है ये तज़कीर है, आयत नंबर 74, 75 और 76, जिसमें अल्लाह ताला ने काफिर और मोमिन का अंजाम बताया है, और इसके साथ ही जो है ये बात बताई है कि जो मोमिनीन हैं उनको आला दर्जात जो है वो नसीब होंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में बुलंद मकामात वालों को इनके नीचे वाले इस तरह देखेंगे जैसे तुम लोग रोशन सितारों को आसमान में देखते हो। और अबू बकर और उमर उन्हीं में से होंगे, और क्या ही खूब मकाम होगा दोनों का, सुभान अल्लाह।
अल्लाह ताला हमें जन्नत के आला दर्जे अता करे और हमसे राजी हो जाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।